السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बहुत करम है कि हम इस वक्त रमज़ान के मुबारक महीने में दाखिल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह ताला ने ये महीना एक दफ़ा फिर हमें नसीब फरमाया। इंसान को जब भी कोई नेमत हासिल हो तो सबसे पहले उसको अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आप जान जाएं कि ये कितनी बड़ी नेमत है जो आपको हासिल हुई है, तो आपका दिल शुक्र से भर जाएगा और आप ज़रा भी तकलीफ़ महसूस नहीं करेंगे कुछ घंटे के लिए भूखा रहने में या थोड़ी मेहनत करने में, बल्कि आप इसको अल्लाह ताला का एहसान समझेंगे कि उसने मुझे पाक होने का मौका दिया, मेरे गुनाहों को अपनी रहमत से धो ढालने का मौका दिया, ये चांस दिया मुझे कि मेरा नामाया आमाल नेकियों से भर जाए। इस रमज़ान में हम कोशिश करेंगे कि हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करें, वो दूरियां जो मेरे और मेरे खालिक के दरमियान में हैं वो ख़त्म हो जाए और अल्लाह ताला की मोहब्बत मेरे दिल में बढ़ जाए। और इससे बढ़ के कौन सी चीज़ अल्लाह ताला की मोहब्बत को ज़्यादा कर सकती है? हम उसके कलाम को समझें, सीखें, हम उसके कलाम के साथ ज़्यादा वक्त लगाएं। और यकीनन आप सब ने ज़रूर ये काम शुरू कर दिया होगा। इसके अलावा उसकी ज़ात को जानना और ज़्यादा उसकी मार्फत हासिल करना, ये उसकी मोहब्बत में इजाफ़ा करने का सबब बनता है। हम अल्लाह ताला को देख तो नहीं सकते मगर उसको जान ज़रूर सकते हैं, उसके कलाम के ज़रिए और उसके नामों के ज़रिए। और ये अजीम तरीन इल्म है, यानी तमाम उलूम में जो सबसे अजीम इल्म है वो है अल्लाह ताला के नामों को, उसके अस्माउ सिफात का इल्म हासिल करना। और बेशक ये इल्म हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत देता है, उसकी ताज़ीम, उसका जलाल और हमारे आमाल में इखलास ये पैदा करता है। अल्लाह ताला को अपने नामों और सिफात से पुकारना ये भी अल्लाह ताला को पसंद है और वो पसंद करता है कि इन खूबसूरत नामों से जो अल्लाह ताला ने हमें बता दिए उनके ज़रिए हम उससे दुआएं मांगे। तो जब आप ये नाम जान जाते हैं तो इसके बाद आसान होता है कि इनके ज़रिए आप अल्लाह ताला से दुआ भी करें। इसी तरह अल्लाह ताला अपने नामों का असर अपनी मखलूक में देखना पसंद फरमाता है। जैसे कि वो अशकूर है तो वो मोहब्बत करता है शाकिरीन से, वो खुद एहसान फरमाने वाला है तो वो मुहसिनीन से मोहब्बत करता है, वो खुद माफ़ कर देने वाला है तो वो दरगुजर करने वालों से मोहब्बत करता है। इसी तरह अल्लाह ताला के नामों को जानना समझना, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ईमान के जो 6 अरकान हैं उनमें पहला रुकन है ईमान बिल्लाह। और जब हम कहते हैं आमंतु बिल्लाह तो ये हो नहीं सकता जब तक कि हम अल्लाह ताला की मार्फत हासिल ना करें। तो इंसान को चाहिए कि वो अपने रब को जानने के लिए उसके अस्माउ सिफात को जाने, और जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला को पहचानेंगे उतना या आपका ईमान बढ़ता चला जाएगा। और आपके दिल में अल्लाह ताला की अजमत होगी। हम अक्सर अपनी जिंदगी ऐसे गुजारते हैं कि कलमा तो पढ़ रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वो कौन है जिसके ऊपर हम ईमान रखते हैं, जबकि इंसान की तो जिंदगी का मकसद ही है कि वो अपने मालिक को जाने। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने नहीं पैदा किया जिन्नों को और इंसानों को मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए। और याबुदून का यहाँ पे माना क्या है? इब्ने अब्बास ने फरमाया, लियाबुदूना लियारिफूना, यानी इबादत का माना है उसको पहचानना कि हम अल्लाह ताला को पहचान लें। और ये जो कान आंखें दिल, ये भी अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए दिए हैं कि हम इनके जरिए अल्लाह ताला को पहचाने, आंखों से देख के, कानों से सुन के, दिल में उसकी पहचान आ जाए, उसकी आजमत आ जाए। अगर अगर हमने इन फैकल्टी से हर काम लिया मगर उसको पहचाना नहीं, तो फिर हमने इनसे फायदा नहीं उठाया। आप देखें, कुराने करीम की सबसे अजीम आयत जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि वो आयतल कुर्सी है। आयतल कुर्सी में भी अल्लाह ताला की पहचान है और अल्लाह ताला का तारुफ है कि वो कैसा है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जो इनको याद कर लेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। आसा का लफ्ज आया, आसा का मतलब सिर्फ रट लेना नहीं है बल्कि मतलब है कि इनको समझना, इनको याद रखना और इनके मुताबिक अमल करना। यानी जब हम अल्लाह ताला के नामों को समझेंगे तो तभी उनके मुताबिक ही हम अपनी जिंदगी में उनका असर ला सकेंगे और अल्लाह ताला को पुकार सकेंगे और हम अल्लाह ताला को सही पहचान सकेंगे। अल्लाह ताला के जो अस्माए हुस्ना हैं, आप इनको देखें तो ये सारे अल्लाह ताला की सिफात हैं। यानी कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो कि उसकी सिफत के बगैर हो, सिफत से खाली हो, यानी ऐसे ही बस नाम हो और उसके अंदर कोई उसकी सिफत ना झलक रही हो। हर नाम में उसकी क्वालिटी, उसकी सिफत बयान की जा रही है, उसका एट्रीब्यूट है वो। और बाज लोग दीन से दूर हो जाते हैं क्योंकि उनके दिलों में बहुत सारे शकूक व शुभात अल्लाह ताला की जात के बारे में होते हैं। हालांकि जितना आप अल्लाह ताला को पहचान लेंगे, ये गिले शिकवे और ये जो शकूक व शुभात हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे दिल से। अल्लाह ताला का नाम, जितने भी हैं, जितनी भी सिफात हैं, हम उनका अहाता नहीं कर सकते क्योंकि जैसे उसकी जात को हम नहीं समझ सकते पूरी तरह, उसके अस्माओ सिफात को भी हम पूरी तरह नहीं जान सकते। मगर इंसानी सतह पर जो थोड़ा बहुत हम पहचान सकते हैं उसके नामों से उसको, तो हम इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान में कोशिश करेंगे कि चंद एक नामों को देख लें, खास तौर पे वो नाम जो कुरान करीम में बार बार आए। याद रखिए, हर नाम अपनी जगह पे आता है कुरान करीम में। कोई नाम एक दफा आया, कोई 10 दफा आया, कोई 100 दफा आया, कोई 1000 दफा आया। तो जो नाम ज्यादा दफा आए हैं, हम उनके ऊपर ज्यादा गौर करेंगे। अल्लाह ताला का जो नाम अल्लाह है, आज उसके ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला के तमाम ही नाम बहुत खूबसूरत नाम है, लेकिन ये अल्लाह ताला का नाम ऐसा है जो कुराने करीम में सबसे ज्यादा दफा आया है। और इसके बारे में उलामा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का इसमें आलम है, यानी अल्लाह ताला का जाती नाम है। जैसे अगर कहा जाए आयशा रहमदिल है, तो आयशा रहमदिल है, आयशा बहादुर है, आयशा सच्ची है। आप सच्चा होना, बहादुर होना और रहमदिल होना आयशा की सिफात है, लेकिन इस लड़की का नाम असल में, इसका इसमें अलम आयशा है। तो अल्लाह ताला के बाकी नामों को उलमा फरमाते हैं कि वो अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, उसका जो जाती नाम है वो अल्लाह है। इसी वजह से आप देखें, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा, अल्लाह ताला ने अपना तारुफ भी इस तरह से कराया, वो अल्लाह वो है जिसका सिवा जिसके कोई इलाह नहीं। और इसी तरह हम कुराने करीम में और जगहों पर भी देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि अल्लाह ताला के लिए जब अल्लाह ताला ने अपना तारुफ खुद करवाया तो फरमाया सूरह ताहा में, मूसा अलैह सलाम को अल्लाह ताला ने अपना तारुफ फरमाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नानी अनल्लाहु, अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक मैं अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, कोई इलाह नहीं मेरे सिवा। तो इससे पता चला हमें कि अल्लाह ताला का ये नाम जो है ये उसका जाती नाम है, और इसी से अल्लाह ताला ने अपना तारुफ भी फरमाया। इसी तरह अल्लाह ताला ने जब कुराने करीम में अपना नाम लिया तो जैसे फरमाया वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वासे वुसत वाला, कुशादगी वाला और अलीम है, ये नहीं फरमाया जो अलीम है वो अल्लाह है। इससे भी हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला का नाम अल्लाह, जिसको हम लफ्ज़े जलाला भी कहते हैं, वो ही उसका जाती नाम। इसी तरह वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, अल्लाह वो है जो गनी और हमीद है। तो इन सब जगहों पर गनी और हमीद अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा गया, बल्कि अल्लाह ताला है, जैसे मैंने आपको कहा एक मिसाल से कि आयशा है जो बहादुर है, आयशा है जो सच्ची है, इसी तरह अल्लाह ताला का ये नाम उसका अपना नाम है। बाज ने कहा कि अल इलाह से है, अल इलाह से अल्लाह बना, बीच वाला जो हमजा है वो गिर गया तो दो लाम मर्ज हो गए और अल्लाह बन गया। तो इलाह से अगर हम इस नाम को देखें तो मुख्तसरन आज बात करेंगे ताकि हम और भी इसमें बातें कर सकें आगे, इस नाम को और देख सकें इसकी खूबसूरती, मगर सिर्फ इस एक इसके रूट से जो माने बनते हैं अली है या लहू से, तो चार माने बनते हैं। अता करना यानी अल्लाह, इसलिए कहते हैं अली है या लहू से ये लफ्ज निकला है, अल्लाह यानी वो अता करता है। हैरान होना यानी वो ऐसी जात है जिससे जिसको जितना इंसान जानता है दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है। फिर इसके अलावा सकून देना जिससे दिलों को सकून आता है, और इसके अंदर माना है पनाह देना मसाइब से, हादसात से, यानी कोई खौफजदा हो के पनाह ले लेता है कि जिसकी वो है अल इलाह। तो इलाह वो है जिसकी पनाह ली जाए कि सारी दुनिया धुतकार दे, सारी दुनिया दुश्मन हो जाए, मुखालफत पे तुल जाए, जिसके पास सकून आता है वो इलाह है, जो हिफाजत करता है वो इलाह है, जो पनाह दे देता है वो इलाह है, जिसके पास जाके छुप जाता है कोई और सकून पा लेता है वो इलाह है, जिसके पास हिफाजत मिल जाती है, मदद मिल जाती है, जो अता करता है, जो तूफानों में आंधियों में मुश्किल हालात में थाम लेता है वो इलाह है, वो है अल्लाह। अब इंसान के मुश्किलात कितनी हो सकती हैं, किसी की जॉब की मुश्किलें, किसी की शादी की हैं, किसी की बच्चों की हैं, किसी की हालात की हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब ऐसे वक्त में किसके पास है कि इंसान पनाह लेने के लिए दौड़े, वो है अल्लाह। आपने कभी इस तरह से अल्लाह ताला को सोचा कि मेरी परेशानी हो तो मैं किस तरफ को जाऊं, वो जो सुकून दे दे, वो जो पनाह दे दे, जो अता कर दे मुझे, वो अल्लाह है। अल्लाह ताला के नाम में ही है ये बातें। कभी आपने इस तरह से अल्लाह ताला के नाम को देखा? और बास कहते हैं इलाह, ये वलाहा से है, जिस जात से इस कदर मोहब्बत हो कि बाकी सब कुछ भूल जाए। मोहब्बत के लिए अरबी में बहुत सारे अल्फाज हैं, मगर ये इंटेंस मोहब्बत के लिए आता है। ऐसी मोहब्बत जिसमें सुकून हो, जिसमें इत्मीनान हो। तो ये बहुत ही अजीम नाम है। इसके बाद हम ये देखें कि क्या वाकई हम अल्लाह ताला को, अल्लाह रब्बुल इज्जत को, अल्लाह जल्ले जलालों को हम ऐसे ही समझते हैं कि जब हमें मुश्किल आती है तो हम उसकी तरफ दौड़ें, हमें सुकून चाहिए हो तो हम उसकी तरफ आएं, हमें मुश्किलों से, मसाइब से, गमों से पनाह लेनी हो तो हमें वही नजर आए, और शदीद मोहब्बत के लायक हम उसी को समझे। इसका मतलब यही है कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लें तो हमारे जहन में आना चाहिए कि वो जात कि जिससे सबसे ज्यादा मैं मोहब्बत करती हूं, और मुश्किल वक्त में जिसकी तरफ मुझे दौड़ना हो, मेरी तवज्जो के लायक वही हो जिसके लिए मैं रोती हूँ, आंसू बहाती हूँ, जो मेरा सहारा है, क्योंकि सुकून उसके पास है ना। और वो ऐसी जात है कि जो हैरान कर दे, इंसान दंग रह जाए, वो जात है। अब इंसान अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला के इस नाम को लेकर चले, यानी इस नाम की ताजीम तो करनी है। हम जब अल्लाह ताला का नाम लेते हैं तो इस नाम की हमारे दिल में एक कदर होनी चाहिए। आप देखें दुनिया के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके नाम कैसे लिए जाते हैं? ऐसे लिए जाते हैं कि मसलन कहा जाता है हजरत फुलां, हाफिजाहुल्ला, और हिज एक्सीलेंसी, और फलां फलां। जितना बड़ा आदमी होता है उतने ही उसके आगे और पीछे नाम के बहुत सारा कुछ लगाया जाता है। अब छोटे छोटे लोग भी होते हैं तो उनके नाम के आगे भी साहेब या साहिबा लगाया जाता है, मुहतरम फलां, और इस तरह की चीज़ें लगाई जाती हैं। अल्लाह सुबहाना व ताला का नाम तो इस कदर अजीम है कि अगर हम इसके आगे और पीछे इस तरह के अदब आदाब के अल्फाज लगाने लगे जैसे उसकी शान के मुनासिब है, तो हमारी उम्र गुजर जाए और एक बार भी हम उसका नाम भी ना ले सके। ये तो हम इतने गुनाहगार हैं, तब भी अल्लाह ताला अपने नाम हमारी जुबान पर जारी फरमा देता है। वरना उसका नाम ही इतना अजीम है कि जैसे किसी ने कहा, किसी शायर ने, कि मैं अपनी जुबान को 1000 दफा मुश्क और गुलाब से धो भी डालूं, फिर भी मेरी जुबान इस लायक नहीं है कि ने तेरा नाम लेती। मगर कुर्बान जाइए अल्लाह ताला की रहमत पर कि उसने कितना आसान कर दिया हमारे लिए अपना नाम लेना। इसके नाम का अदब तो इतना है कि लोग तरस जाते लेकिन उसका नाम ना ले पाते, क्योंकि ये जुबानें इस लायक ही नहीं है। तो उसके नाम का भी बहुत अदब है। आप देखें, एक दफा हजरत बिशर बिन हाफी, उनसे पूछा गया कि आप इतने बुलंद मर्तबे तक कैसे पहुंचे, यानी आपको ये मकाम कैसे मिला। वो तो एक डाकू थे, एक अय्याश तबीयत थे, बहुत शराबी थे। तो फरमाते हैं, मेरा कोई कमाल नहीं, मैं तो एक गुनाहगार आदमी था। एक मर्तबा रास्ते से गुजरते हुए एक कागज पर नजर पड़ी, ये इतनी शराब पीते थे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, शराब के नशे में धुत रहते थे। तो कहते मैं एक दफा रास्ते से गुजर रहा था, एक कागज पर नजर पड़ी, मैंने वो कागज उठा के देखा, उस पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इस कागज को साफ करके अपनी जेब में रख लिया। मेरे पास उस वक्त सिर्फ 2 दिरहम थे और इन 2 दिरहमों के अलावा कोई चीज नहीं थी मेरे पास। मैं इत्र फरोश की दुकान पे गया और इन 2 दिरहमों से एक खुशबू खरीदी और वो खुशबू इस कागज पे मल दी। इस रात जब मैं सोया तो ख्वाब में किसी कहने वाले को ये कहते हुए सुना है, बिशर तूने हमारे नाम को रास्ते से उठा के साफ करके खुशबू लगाई, हम तेरे नाम को दुनिया और आखिरत में मुअत्तर कर देंगे। तो अल्लाह ताला का नाम बड़ा बाबरकत है, ये नाम ही इतना बरकत वाला है कि जिस चीज पे ये नाम ले लिया जाए उस चीज में बरकत हो जाती है। इसीलिए तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस चीज पे भी आप ये अल्फाज पढ़ लेंगे उस चीज के अंदर बरकत आ जाएगी, खैर आ जाएगी। खाने वक्त, पीने वक्त, सवारी पे बैठते वक्त, कोई खत तहरीर करते वक्त, हर चीज में हमें सिखाया इसीलिए गया कि बिस्मिल्लाह पढ़े। हालांकि हमें इसके छोटा सा एक रस्मी सा जुमला लगता है, लेकिन ये रस्म नहीं है, इसके अंदर इतना कुछ है कि आप जान जाएं तो आप कोई काम बिस्मिल्लाह के बगैर ना करें। इसमें हम ये बता देते हैं कि अल्लाह हमारी कोई ताकत नहीं, तेरी मशीयत के बगैर कोई चीज नहीं हो सकती। हम जब ये कलिमा पढ़ लेते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी ना, हर वो काम जो अल्लाह के नाम से शुरू ना किया जाए वो अधूरा है, वो जड़ कटा है, तो वो काम पूरा नहीं हो पाता, उसमें से बरकत निकल जाती है। अगर अल्लाह के नाम के बगैर इस तरह से कोई काम किया जाए, और यही अल्लाह ताला का नाम है जो अल्लाह ताला ने अपने हर जिक्र के लिए, ये नहीं फरमाया कि अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू करते रहो, ये नहीं सिखाया इस तरह से। देखिए बाज लोगों ने इस तरह से हू और अल्लाह अल्लाह बस ये कहना इसको बना लिया कि ये बड़ा आला जिक्र है, हालांकि ये हमें सिखाया ही नहीं गया। हमें क्या सिखाया गया कि जब भी तुम अल्लाह का जिक्र करो तो जो सबसे अल्लाह ताला को महबूब जिक्र है वो क्या है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, इन सब में क्या है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बार बार अल्लाह ताला ने इसके साथ अज़कार सिखाए हैं कि आप इस तरह से कहें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी तरह मैंने आपको बताया बिस्मिल्लाह, इस तरह आऊज़ु बिल्लाह, तो ये सब इसी नाम की साथ ये सारे अस्कार हैं। इस नाम का ना तस्निया है ना इसकी जमा हो सकती है। तकरीबन 2500 दफा ये कुरान करीम में अल्लाह ताला का नाम आया है, और इस नाम की हम क्या खासियतें बयान करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया, ला उहसी सना अन अलैका अंत कमा अस्नैता अला नफ्सिक, अल्लाह मैं तेरी तारीफ नहीं कर सकता, तेरी तारीफ तो वैसे ही है जैसे तूने खुद अपनी तारीफ फरमाई हो। ये नाम किसी चीज पे भी ले आ जाए, वो थोड़ी भी चीज होगी ना उसमें अल्लाह ताला खैर डाल देंगे। वो आप किसी जगह पर आपको वहशत महसूस हो रही हो, किसी जगह पर आपको कोई खौफ महसूस हो रहा हो, तो आप कहें अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिक बिही शैया, तो ये भी हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई अल्लाह अल्लाह रब्बी, इसमें भी अल्लाह अल्लाह की बार बार तकरार है। तो ये अल्लाह ताला का वो नाम है जो बहुत अजीम नाम है। इस नाम की बड़ी बरकतें, बड़ी शान है। ये वो नाम है जिसके बारे में आता है ना कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर वो जा रहे थे कहीं और रास्ते में एक सहरा में से गुजरे, तो वहां पे एक चरवाहा था जो बकरियां चरा रहा था, उससे फरमाने लगे क्या तुम एक बकरी हमें दे दोगे, ज़िबा करके हमें गोश्त खिलाओ और तुम भी खाओ, तुम्हें भी मिल जाएगा। उसने कहा कि लेकिन ये बकरियां मेरी नहीं हैं, ये बकरियां तो ये अपने मालिक की हैं और मैं तो सिर्फ एक गुलाम हूं। तो उन्होंने फरमाया तो क्या हो गया, तुम इनके मालिक को, अब उसका इम्तिहान लेना चाहते थे। फरमाते हैं क्या हो गया, तुम कह देना कि ये बकरियां तो तो किसी ने किसी उसने भेड़िए ने खा ली एक बकरी, तो ऐसे करके तुम इसके मालिक को कह देना। वो चरवाहा उनकी तरफ देख के कहता है, आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है? अगर मैं ये कह दूंगा तो अल्लाह कहाँ है फिर? तो अब्दुल्ला बिन उमर बड़े हैरान हुए उसके ईमान से, और जब वापस आए तो उस गुलाम के आका को बुलाया और उससे इस गुलाम को खरीद लिया, और बकरियां भी खरीद के गुलाम को वो बकरियां तोहफे में दे दी और गुलाम को आज़ाद कर दिया। और उसकी बात से इतने मुतासिर थे कि फरमाते हैं, जिसके नाम से तुझे आज दुनिया में आज़ादी मिली, उसी के नाम से मैं उम्मीद करता हूं कि आखरत में तुझे आग से अभी आजादी मिल जाए। यानी वो चरवाहा वो था कि जिसको जंगल में तन्हाई में उस वक्त भी अल्लाह का डर था। और ये वो नाम है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा था तो उस वक्त फरमाते हैं, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफी है, मेरे लिए अल्लाह काफी है। अल्लाह ताला का नाम लिया और बस आग में उनको डाल दिया गया। ये आखिरी कलमा था जो उनकी जुबान से निकला। उस वक्त बड़े बड़े फरिश्ते तैयार खड़े हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म आए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से हम बचा लें। जिब्राईल अलैहिस्सलाम तैयार हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म आए और मैं इनको आसमान पे उठा लूं या आग को बुझा दूं। मीकाईल अलैहिस्सलाम तैयार खड़े हैं, अल्लाह ताला का हुक्म आए मैं इस आग के ऊपर बारिश बरसा दूं। हवाओं के फरिश्ते तैयार खड़े हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म आए तो मैं सारी आग को बुझा दूं हवा चला के। मगर अल्लाह ताला का हुक्म नहीं आया, अल्लाह ताला ने उस आग को ही ठंडा फरमा दिया। तो अल्लाह ताला का जो ये नाम लेगा, अल्लाह ताला कैसे उसकी मदद फरमाता है? और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमा दिया ना, सूरत नमल में, अम्मा युजीबुल मुस्तर इजा दाअ व यक्षिफु सू, कौन है जो बेबस की दुआ को सुनता है, उसकी पुकार को सुनता है और उसकी तकलीफ दूर करता है? इसी आयत में आगे है, अइलाहुम अल्लाह, अल्लाह के अलावा भी कोई इलाह है? उसके सिवा तो कोई नहीं है। जो इंसान बेकरार हो के जिसको पुकारे और वो उसकी दुआ को सुने, वो सिर्फ अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला का ये नाम बहुत बाबरकत है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि ये इसमें आजम है, क्योंकि इस नाम की बरकात बहुत ज्यादा है। तो इसमें आजम से जो भी दुआ की जाए वो कबूल होती है। इसलिए आप भी अल्लाह ताला के इस नाम को हमेशा अपनी दुआएं करने में इस नाम को आगे रखें। अल्लाहुम्मा जब आप कहते हैं तो वो भी या अल्लाह ही होता है। इसी तरह जो भी अस्कार हैं, जब अल्लाह ताला के इस नाम को आप लेंगे, इन अज़कार में अल्लाह ताला को याद करेंगे, तो वो भी बहुत ही बाबरकत काम है। इसके बाद भी दुआएं कबूल होती हैं, जैसे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहने के बाद, और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ये कहने के बाद भी दुआएं कबूल होती हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला के इस नाम से उसको पुकारा करें। आज हम यहाँ तक ही अल्लाह ताला के इस नाम को समझेंगे। इंशाअल्लाह ताला कल हम एक और नाम को देखेंगे। अब और हमें रमज़ान में क्या करना है? इस मुबारक महीने में हमने एक काम ज़रूर करना है। हर कोई अपनी इस्तेआत के मुताबिक घर के हर फर्द से जितना भी हो सके आपसे उसके मुताबिक रोज़ाना सदका करवाएं, चाहे $1 ही। हमारे यहाँ पर चूंकि कैश पे ज़्यादा काम नहीं होता, चलो जेल है, वेनमो है, आप इनसे भी एक एक डॉलर भी जा सकता है। जितने अफराद हैं, हर एक 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 डॉलर जरूर हर दिन सदका कर। वैसे तो आप महीने भर का भी कर सकते हैं, लेकिन हर रोज करें तो उसकी बरकतें और हैं। इससे बच्चों को भी याद रहेगा हमेशा कि हमारी माँ जो थी हर रमजान में एक बॉक्स होता था उसमें डलवाती थी, या इस तरह से हमसे सदका करवाया करती थी। तो एक मोटिवेशन भी होगी, और इसी को सदका जारिया भी कहते हैं ना, कि आप एक काम कर रहे हैं आपके बाद भी वो काम जारी रहे, खैर का कोई काम आपने शुरू कर दिया। और अगर इफ्तार से पहले कर लें तो बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए कि उसके बाद आप दुआ करने बैठेंगे तो नेकी के काम करने के बाद दुआएं भी कबूल होती हैं। इस तरह कोशिश करें कि अपनी इस रमजान में इफ्तारी को सिंपल करें, बहुत ज्यादा इफ्तारी के ऊपर टाइम ना लगाएं। देखिए जितनी ज्यादा डिशेस बनानी होगी उतना ही टाइम भी लगेगा जाहिर है, तो अगर हम इसको कम कर लें, अगर आप चार बनाती हैं तो दो बना लें, दो बनाती तो एक बना लें, चलें अगर ज्यादा ही आपको बहुत ही शौक है तो वीकेंड पे ज्यादा कर लें, लेकिन कम से कम थोड़ी प्रैक्टिस शुरू करें वीकडेज में कि सिंपल रखें। आज की दुआ जो है जिसके साथ हम इंशाअल्लाह वो ताला इस रमजान का आगाज करेंगे, वो दुआ हजरत उमर रजील तला की दुआ है, और बहुत ही जबरदस्त दुआ है। उस दुआ को आपने इंशाअल्लाह वो ताला मांगते रहना है, अल्लाहुम्मा जाल अमली कुल्लहु सालिहा, अल्लाह मेरे हर अमल को नेकी का अमल बना दे, यानी जो भी मैं काम करूँ वो नेकी हो। वजअलहु लिवजही का खालिसन, और अल्लाह ताला इसको अपने चेहरे के लिए खालिस कर दे। वला तजाल, और ना बना ली अहदिन फीही शेया, किसी एक के लिए भी इसमें कोई हिस्सा ना हो, किसी के अभी हिस्सा ना हो, यानी इसमें कोई ऐसी रियाकारी ना हो जाए, कोई ऐसा कि मैं फलां के लिए कर रही हूँ या फलां को दिखाने के लिए या फलां को राजी करने के लिए, किसी का भी हिस्सा ना हो, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खालिस हो। तो सारे रमजान में अल्लाह ताला मेरा हर अमल अपने लिए खालिस कर लेना, उसमें किसी और कोई शराकत ना हो, दूसरा ये कि हर मेरा अमल नेकी का अमल बस बन जाए। और जिक्र तो ला इलाहा इल्लल्लाह से बेहतरीन जिक्र क्या हो सकता है, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा था, या अल्लाह ताला मुझे कोई ऐसा जिक्र बता दे जो खास मेरे लिए हो, अल्लाह ताला ने यही जिक्र बताया उनको। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये जिक्र तो मतलब आम सा जिक्र है, या अल्लाह ताला ये तो सारे ही करते हैं, तो मुझे कोई खास ही जिक्र बता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर जमीन व आसमान और जो कुछ उसमें है एक पलड़े में डाल दिया जाए और दूसरी तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह डाल दिया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह ज्यादा वजनी होगा। ये इतना वजनी जिक्र है, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में मौत भी ला इलाहा इल्लल्लाह पे ही आए। इसी तरह कुरान करीम की जो आप तिलावत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हर रमजान की तरह इस दफा भी हम कोशिश करें कि हम एक से ज्यादा दफा कुरान करीम को मुकम्मल कर लें। और इसके लिए बेहतरीन तरीका एक मैं आपको बताती हूँ, कि आप रोजाना जो पढ़ते हैं वो तो ठीक है, पढ़े आप दिन में पढ़ रहे होंगे, या अगर आप तरावी घर में पढ़ रहे हैं तो घर में भी आप उसमें कुरान करीम पकड़ के पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप हर नमाज के बाद उस्मानी मुसहफ अगर आपके पास है तो उस्मानी मुसहफ में हर पारा जो है 20 पेजेस का है। अब आप भी अपना जिस कुरान से भी आप देख रहे हैं उसमें देख लें कि कितने पेजेस का एक पारा है, ठीक है। अब ये उस्मानी मुसहफ में तो चूंकि 20 पेजेस का तो बहुत ही आसान है, हर नमाज के बाद अगर आप 4 पेज पढ़ लेंगे, और 4 पेज ऐसे नहीं है कि एक दो तीन चार, ऐसे नहीं, फ्रंट बैक, फ्रंट एक बैक दो, अगले का फ्रंट एक बैक दो, यानी दो लीफ आप उठा ले, दो पत्ते, ये जो दो सफ़े पकड़ लें आप, एक सफ़ा और दो सफ़ा, हाथ में दो आपने वर्के पकड़े हुए, तो इतना सिर्फ पढ़ लेंगे ना तो आप सोचे कि हर नमाज के बाद कितनी देर लगेगी इसको पढ़ने, आपका कुरान करीम मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह वो ताला। अगर आप ये सिर्फ दो सफ़े हर नमाज के बाद पढ़ लिया करेंगे तो एक आपका वो ख़त्म हो जाएगा और एक आपका इंशाअल्लाह वो ताला वैसे जो आप पढ़ते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। चाहें तो आप फिर तरावी में अलग एक तीसरा कुरान करीम शुरू कर लें, कि उसके अंदर आप 3/4 कम अज़ कम ईशा के बाद वाली क़याम में पढ़ लें, और रात को फिर उठें सहरी के पहले तो आप उसमें 1/4 पढ़ लें, तो आपका हर दिन एक वो भी पारा इंशाअल्लाह ताला साथ साथ होता जाएगा। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए, अल्लाह ताला ये जो हमने रमज़ान शुरू किया है इसको हमें ऐसे मुकम्मल करने की तौफीक दे कि हम गुनाहों से पाक हो चुके और हमारी नेकियां बहुत ज़्यादा हमारे मीज़ान में बढ़ गई हों, और अल्लाह ताला हमसे वो नेकी के काम ले जिनसे वो राज़ी होता हो। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.